बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है और आज हम अंदाज़े जहाँ में मिस्र में सदारती इलेक्शन और इनकलाब को सबोताज करने की साजिश के ज़ेरे उन्वान गुफ्तगू करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। नाज़रीन, मिस्र में सदारती इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू होने के साथ ही इनकलाब को अगवा और सबोताज करने की साजिश में भी तेजी आ गई है। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी दिन माजूर डिक्टेटर हुस्नी मुबारक के दस्ते रास्त उमर सुलेमान ने, जो इनकलाब से पहले 18 साल तक मिस्र की इंटेलिजेंस का चीफ और डिक्टेटर हुस्नी मुबारक का मोतमद खास रहा है और जिसको मुबारक ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में अपना नायब मुकर्रर किया था और इसी के साथ सेहूनी हुकूमत का इंतहाई करीबी फर्द मिस्र में वो शुमार किया जाता है, उसने कागजात नामजदगी जमा करा के मिस्र के सियासी मैदान में हलचल मचा दी। उसके उम्मीदवार बनने का इसराइल और सेहूनी हलकों ने खैर मकदम किया और मिस्र के आवाम उसके खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। काहिरा में एक बार फिर लोग तहरीर स्क्वायर पर जमा हो गए और अपने इनकलाब के तहफ्फुज़ का अहद किया। मिस्र की पार्लियामेंट ने एक बिल पास करके उन तमाम लोगों को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया जो साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और फिर मिस्र के सदारती इलेक्शन के कमीशन ने 10 अफराद की सलाहियत रद्द कर दी, जिनमें उमर सुलेमान के साथ ही इख्वानुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खैरत शातिर का नाम भी शामिल है और 2 रोज़ कबल उमर सुलेमान और खैरत शातिर समेत मुतादिद अफराद की सलाहियत हतमी तौर पर रद्द करने का ऐलान किया गया। यहाँ पर एक काबिले तवज्जो नुक्ता यह है कि मिस्र की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तौर पर जो बिल पास किया है वो उसके लिए ज़रूरी है मिस्र की हुक्मरा फौजी कौंसिल की मंजूरी, और मिस्र की हुक्मरा फौजी कौंसिल ने अब तक उसको मंजूरी नहीं दी है। और इसी के साथ मिस्र की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जुमे को एक बार फिर हुक्मरा फौजी कौंसिल के खिलाफ मुजाहरे करने का ऐलान किया है। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जनाब, इस वक्त मिस्र में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपकी राय क्या है?
बहुत शुक्रिया मेहदी शराफत साहब। मिस्र के अहवाल को अगर हम इस तनाजुर में देखें कि हुस्नी मुबारक को रुख्सत हुए कमोबेश 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है और इस 1 साल के अंदर बज़ाहिर जो जमहूरी पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से एक पेशरफ भी हुई है, पार्लिमान के इलेक्शन एक लिहाज से मुकम्मल हो गए और बहुत से लोगों को अचंबा हुआ होगा, हैरत हुई होगी कि इसमें जो इस्लामी कुव्वतें हैं, ख़ास तौर पर अख्वानुल मुस्लिमीन जो है उसने बहुत भारी अक्सरियत हासिल की है। शायद मगरिब को भी और अमेरिका को भी और बहुत से दूसरे ममालिक को अचंबा हुआ हो कि साल हा साल से एक ऐसी जमात जिसको कुचला जा रहा था, जो उसने मुबारक ही के नहीं बल्कि उससे पेशरव जो उनके थे, सदूर थे, और जो फौज थी उसके अताब का मुसलसल निशाना रही, लेकिन इस सख्त जां जमात ने बहरहाल अपने वजूद को किसी न किसी तौर पर कायम रखा और जब वो इलेक्शन में आए तो शायद ये गुमान या ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, लेकिन मिस्र के अवाम ने बहरहाल उन पर एतमाद किया और वो गालिब अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में पहुंचे और दूसरी जमात जो जो सलफ़ी जमात कहलाती है या सलफियों की जमात कहलाती है, उसको भी एक हद तक, कोई एक चौथाई पार्लियामान की हद तक वो भी पहुंच गई। तो गालिब अक्सरियत बहरहाल उन्हीं लोगों की आई जो पुरानी रिजीम जो थी या उसने मुबारक का जो दौर था, जो तशद्दुद का, जुल्म का, ज़्यादती का, जबर का, सेहुनियत नवाजी का, अमरीका नवाजी का जो दौर था, उसके ख़िलाफ़ एक राय आई। तो कहना ये चाहिए कि पार्लिमानी इंतखाबात ने एक चीज़ जो साबित की वो ये थी कि मिस्र के अवाम ने उन पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया, उस सोच को मुस्तरद कर दिया जिसके अलम्बरदार उसने मुबारक थे या उनके पेशरव थे, और जिसकी अलम्बरदारी या पासदारी या तर्जमानी मिस्र की फ़ौज कर रही थी। तो ये एक लिहाज से इनकलाब को एक नया रंग या एक नया रुख तो ज़रूर मिल गया, लेकिन रुकावटें बहरहाल मौजूद हैं। और जो फौजी कौंसल वहाँ पे जर्नैलों पे मुश्तमिल है, ये फौजी कौंसल एक तरह का तसलसल है उसने मुबारक का, क्योंकि सारे मोतमद वहीं बैठे हुए हैं उनके, हत्ता कि जिस इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए हैं ये खैरात शातर के नामिनेशंस और कुछ और लोगों के भी, वो भी एक फौजी आफिसर हैं और वो उसी कबील से ताल्लुक़ रखते हैं, उसने मुबारक के दौर ही से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपनी प्रायोरिटीज़ रखते हैं। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सबसे नाकिस जो वजूहात बयान की गई हैं किसी के कागज़ मुस्तरद करने के हवाले से, वो खैरात शातर के हवाले से ही हैं, जिन पे माजी की किसी एक कठपुतली अदालत से किसी सज़ा का हवाला दे दिया गया है और उनको मैदान से निकाल कर, उमर सुलेमान को भी निकाल कर, एक तरह और सल्फियों का जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी फारिग करके एक तरह का तवाज़ुन कायम रखने की वो कोशिश की गई है, जो दरअसल तवाज़ुन नहीं है, दरअसल गालिब किस्म की एक जानिबदारी है। और अख़वानुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को मैदान से निकालने के बाद ये कोशिश है कि कोई ऐसे लोग आ जाएं जो निस्बतन लिबरल एजेंडा रखते हैं। ये आप जानते हैं कि वहाँ पे इस वक्त जो कश्मकश है वो आइन साजी में भी बड़ी एक एक एक, एक, एक तसादम की कैफियत चल रही है वहाँ पे। वहाँ के सो कॉल्ड लिबरल्स जो हैं और सो कॉल्ड जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, या इस्लामी निज़ाम या इस्लामी अकदार या इस्लामी उसूल इंसाफ के ख़िलाफ़ एक राय रखते हैं, एक सोच रखते हैं, वो आइन साजी के अमल से अपने आप को ये कह के अलग हो गए हैं कि इस पे गलबा है। हालांकि वो गलबा तर्जमानी करता है अवाम की राय की। अगर अवाम बारी अक्सरियत से किसी एक जमात पर एतमाद करते हैं तो उस जमात को किसी भी आइन साजी में या किसी भी पार्लिमानी एक्टिविटी के अंदर बहरहाल अक्सरियत हासिल होगी। तो आइन साजी के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात हैं, इन लोगों की रुकावटें, और इसके साथ साथ फौज जो जर्नैलों की कौंसल है वो भी कमोबेश 60 साल तक पिछली 6 दहाइयों में जो सुदूर रहे हैं वो सारे के सारे फौजी पस मंज़र के रहे हैं। तो वो फौज जो उन सुदूर के ज़रिए से अमूर ममलिकत में बड़ी गालिब एक तरह की उसकी रही है, शमूलियत रही है, वो अपने असरो रसूख पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए आसानी से तैयार नहीं है। वो भी नए आइन में अपने तहफ़ुज़ात चाहती है। सेकुलर लोग भी अपना एक एजेंडा रखते हैं, उसे सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा। तो आइन साजी के अंदर भी मुश्किलात हैं। फिर एक जर्नैल साहब ने अभी ऐलान कर दिया, जो कौंसल के रुकन भी हैं फौजी कौंसल के, उनका कहना यह है कि अगर ये जून तक कंप्लीट नहीं हो जाता यह सारा अमल आइन साजी का, तो सदारती इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। गोया एक लिहाज से मशरूत किया जा रहा है, और अगर आइन में खलल पड़ता है, आइन की तैयारी में रुकावटें आती हैं, तो लामहाला ये एक इशारा दिया गया है कि सदारती इंतखाबात को भी आगे कर दिया जाएगा। तो यूं, और फिर जगह जगह ये भी एक खबर आई है कि ऐसी वारदातें शुरू हो गई हैं, तखरीबकारी की, आतशजनी की, बाज तेल के कुओं को आग लगा दी गई। तो एक अफरा तफरी की एक ऐसी कैफियत भी पैदा की जा रही है जिससे मिस्र के अवाम के अंदर बदजनी पैदा हो इस पूरे इंतखाबी अमल के बारे में। वो अमन व अमान के लिए, अपनी जान व माल की हिफाजत के लिए, अपने कारोबार की तरक्की के लिए, वो ये देखने लगे कि जी नहीं, हमें नहीं ज़रूरत इस खेल तमाशे की, हमें तो एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, चाहे वो फ़ौज देती है चाहे कोई और देता है। तो एक बेयकीनी की कैफियत को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक अखलास अमल की जो ज़रूरत होती है, नेक नियति की जो ज़रूरत होती है, निज़ाम को वाकई सिविलियन इदारों के सुपुर्द करने के लिए जिस डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, जिस अज़्म की ज़रूरत होती है, वो हमें फ़ौजी कौंसिल में नज़र नहीं आता। और ऐसे अनासिर भी बहरहाल सरगर्म है वहाँ पे पूरी तरह, जो एक ऐसी पुरमन फ़ज़ा नहीं कायम होने दे रहे जिसमें एक लगे बंदे डिसिप्लिन के तहत, नज़्म व ज़ब्त के तहत सदारती इंतखाबात हो सकें। उम्मीदवारों के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, मकबूल उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है, अपना एजेंडा नाफिज किया जा रहा है, आइन साजी में रुकावटें डाली जा रही हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की जा रही है। तो ये सारे वो अवामिल हैं जो खदशात पैदा करते हैं कि कहीं जमहूरियत के इस्तेकाम का, या इस्तेकाम तो बाद की बात है, जमहूरियत के एहया का या जमहूरियत के क़याम का जो अमल शुरू हुआ है, मालूम नहीं कि वो कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा जी सिद्दीक साहब, इन हालात में मिस्र के इनकलाब का क्या बनेगा?
देखिए, इनकलाब के रास्ते तो मेहदी शराफत साहब रुकते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि आपके मुल्क का, ईरान का तजुर्बा हमारे सामने है इस इनकलाब के बारे में, इनकलाब इस्लामी के बारे में भी, क्या क्या कुछ नहीं हुआ है, कितनी साजिशें नहीं हुई हैं। अमेरिका ने, उसके पिट्ठुओं ने और उसके हवारियों ने अदम इस्तेकाम की कितनी कोशिशें की नहीं की हैं, आपके इंतखाबी अमल के बारे में कितने शकूक व शुभात नहीं फैलाए हैं, अपने हम नवाओं को और अपने हाशिया बरदारों को आगे लाने के लिए किस फराख कल्बी से उन्हें इमदाद दी गई है, और किस तरह से जो आईनी एक बंदोबस्त है उसको उखाड़ फेंकने के जो बागियाना रविश रखने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई की गई है। इन तमाम बातों के बावजूद ईरान का इनकलाब न सिर्फ अपनी मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है बल्कि वो नश्वो नुमा पा रहा है, और मुसलसल दबाव के हरबों के बावजूद जो आजकल भी जारी हैं, मुसलसल नाकाबंदियों के बावजूद, मुसलसल माली मुश्किलात के बावजूद, मुसलसल खित्ते के ममालिक पर ये दबाव डालने के बावजूद कि वो ईरान के साथ किसी तरह का राव रस्म ना रखें, हमारे मुल्क पर भी इस तरह का दबाव है, इसके बावजूद ईरान का जो निज़ाम है और ईरान का जो इनकलाब है वो बुनियादी तौर पर अवाम की ताईद व वसी तर अवामी ताईद व हिमायत के बलबूते पर आगे चल रहा है। अब जहाँ तक मिस्र का ताल्लुक है, ये आप यकीन जानिए कि जो एक अमल शुरू हो गया है इस खित्ते के अंदर, मलूकियतें लरज रही हैं, बड़ी बड़ी तवील आमरियतें अपने दफ्तर लपेट रही हैं, जो बची कुची हैं वो भी लर्जा बरंदाम हैं, तो ये कहना कि इस तब्दीली के अमल को माकूस तरीके से पीछे धकेल दिया जाएगा या इनकलाब की ये रौ रुक जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि असल मकासद के हुसूल में ताखीर हो जाए, या एक ऐसी नुमाइंदा अवामी हुकूमत कायम होने में अवाम के ज़ोर पर, इंतखाबात के ज़ोर पर कुछ और वक्त लग जाए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि अब फिर से कोई हुस्नी मुबारक जन्म ले सकेगा, ये बड़ा मुश्किल है कि फ़ौजियों की कौंसल मुस्तकिलन अपना तसल्लुत जमा सकेगी। जो अवाम की एक आवाज़ एक इंतखाबी अमल के ज़रिए सामने आ चुकी है, उस आवाज़ को कुचलना और इस पूरे जमहूरी अमल को फिर से इसका दफ्तर लपेट देना, अगर ऐसा किया गया तो अदम इस्तेकाम का ज़बरदस्त रेला आएगा। और मेरा ख्याल है कि वो जमातें जिनको आपने कुचल दिया था, जिनको दबा दिया था, जिनको मुंतशिर कर दिया था, और वो अब पिछले साल के फरवरी के इनकलाब के बाद से फिर से नमूदार हो चुकी हैं, और नमूदार ही नहीं हो चुकी, अवाम की ताईदो हिमायत के बाद पार्लियामान में पहुंच चुकी हैं, एक सनद हासिल कर चुकी हैं अवामी मकबूलियत की, उन जमातों के अंदर एक नई रूह पैदा हो चुकी है, नई तवानाई आ गई है, वो नए अज़्म के साथ अवाम की कुव्वत के साथ किसी गैर जमहूरी अमल को या फौजी तसल्लुत को शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो इनकलाब में ताखीर हो सकती है इनकलाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने में या जमहूरी एक निज़ाम को कायम होने में, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि इस इनकलाब को दोबारा से किसी बोतल में बंद किया जा सकता है और फिर से हुस्नी मुबारक के उस अहद को वापस लाया जा सकता है या किसी ऐसे कठपुतली को बिठाया जा सकता है जो जिसका किबला व काबा अमरीका हो और जो फ़लस्तीन के बारे में वही रवैया रखे जो अमरीका ने रवा रखा है या जो हुस्नी मुबारक ने रवा रखा था। तो इम्कानात यही हैं कि मुश्किलात के बावजूद, उलझनों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद, साजिशों के बावजूद, सबूताश करने की रंगारंग कोशिशों के बावजूद, इनकलाब चंद महीनों तक अगर इसमें तातुर भी पड़ता है तो बिलाखिर अवामी कुव्वत ही को सामने आना है, उसी ने राज करना है, क्योंकि ये उसूल, ये कुलिया, ये फार्मूला अब तय हो चुका है और इस फार्मूले की नफी करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक़ देखे साहब। और नाज़रीन, हमारे दिल्ली स्टूडियो में हिंदुस्तान के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान साहब मौजूद हैं। ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी ख़ान साहब, मिस्र में सदारती इलेक्शन के कमीशन ने उमर सुलेमान की सलाहियत को मुस्तरद कर दिया है, इस पर अवाम को काफ़ी एतराज़ था, ये हुस्नी मुबारक का दस्तराज़ था, मिस्र की इंटेलिजेंस का चीफ रहा है, इसराइल के साथ इसके बड़े ज़बरदस्त और बड़े करीबी रवाबित रहे हैं, मिस्र के अवाम इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए थे, लेकिन इसी के साथ कमीशन ने सदारती इलेक्शन के एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार इख्वानुल मुस्लिमीन के खैरत शातिर को भी नाअहल करार दे दिया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
ये मैं समझता हूँ कि अम्र सुलेमान की नामजदगी को रद्द करना बहुत ही मुनासिब था, इसलिए कि वो आदमी उसी तरह से उन सारे जरायम का जिम्मेदार है जिस तरह से कि मुबारक जिम्मेदार थे, बल्कि उनसे भी ज़्यादा, इसलिए कि इंटेलिजेंस का सरबराह होने की वजह से वो सारे गलत काम किए जो कि मैं समझता हूँ मुबारक के खाते में भी गए। लेकिन खैरत शातिर जो कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और 10-12 साल तक मुबारक की जेलों में रह चुके हैं, ऐसे आदमी की नामजदगी को रद्द करना बिल्कुल गलत था और इसका कोई भी मैं समझता हूँ जवाब नहीं है। और मेरे ख़्याल में वो एक आला अदालत में अपनी अपील भी ले गए हैं और उसी के साथ साथ अपनी जो कैंपेनिंग होती है उसको भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन उनके अलावा एक दूसरा आदमी भी इख्वान मुस्लिमीन का, अब्दुल मुनीम अबुल फतोह भी मैदान में है, जिनको कि पहले इख्वान ने निकाल दिया था, इसलिए कि जिस वक्त उन्होंने अपनी नामजदगी का ऐलान किया उस वक्त इख्वान की पॉलिसी ये थी कि हम सदारती इंतखाबात में खड़े नहीं होंगे। तो बहरहाल वो भी इख्वान के ही आदमी हैं और अगर इनकी इजाज़त नहीं मिलती है तो वो बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जो अस्करी मजलिस है और जो वो अनासिर हैं जो कि मुबारक के ज़माने से वहाँ पर अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुए हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हीं की तरह का एक आदमी, अमर मूसा बहरहाल उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं के अगरचे उनका नाम इतना बदनाम नहीं है लेकिन उसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने ही उनको अरब लीग का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो उनकी ख्वाहिश होगी कि सबको दबा करके उनको ले आया जाए ताकि इस वक्त जो सूरत हाल इनकलाब के बाद पैदा हुई है कि हालांकि इंतखाबात में 70% लोगों ने इस्लाम पसंद लोगों को यानी इख्वान को और हिजबुन नूर जो सलफी पार्टी उसको वोट दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इख्तदार मुंतकिल नहीं हुआ है। आज भी प्राइम मिनिस्टर मुबारक का ही एक आदमी कमाल जंजूरी बैठा हुआ है और आज भी मुबारक की जगह फौज के जनरल साहब जो मुशीर तंतावी हैं वो बैठे हुए हैं। तो गोया एक तरह से इनकलाब की मुंतकली जो है सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नहीं हुई है और वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि मुमकिन है कि आगे जो इंतखाबात होने वाले हैं जून में उसमें भी वो उसमें तातुल पैदा कर दें और उसको आगे ले जाएं। और इसी के साथ साथ उनकी पूरी कोशिश है कि ये लोग भी अपना काम न कर पाए, यानी पार्लियामेंट को वो किसी न किसी तरह से दबाव में रखे हुए हैं कि जिस तरह से वो चाहते हैं कि कानून बने और आइन बने उसमें दखलंदाजी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ही अल-अज़हर को ये मजबूर किया कि वो उस कमेटी से निकल जाए ताकि उस कमेटी की मस्दाकियत वो न रह जाए जो कि होनी चाहिए थी। और जिस तरह से एक नज़र आता कि पूरे आवाम की और सारे मुल्क की शमूलियत उसके अंदर है, वो भी एक तरह से दिखाना है कि ये नहीं है। इसी तरह से जो क़िब्ती हज़रात हैं वो भी निकल आए हैं, मैं समझता हूँ उनके निकलने का भी वजह यही होगी कि ये जो इस वक्त हाकिम इस वक्त हैं यानी कमाल जंजूरी और मुर्शिद तंतावी वगैरह, इन्हीं लोगों का दबाव पीछे से होगा कि भाई तुम निकल जाओ ताकि इस कमेटी की मस्दाकियत ख़त्म हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के एक सीनियर तजिया निगार सफदर रजा साहब से। सफदर रजा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब। मिस्र का इनकलाब इस वक्त जिस हसास दौर से गुज़र रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस दौर से वो बखैरियत गुजर जाएगा?
मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े नुमाइंदगान को नुमाइंदगी के हक से महरूम करना और ये आर्बिट्रेरी करना, यानी जिस पर कोई कानून मौजूद ना हो, जिस पर कोई आइन मौजूद ना हो, जिस पर कोई गाइडलाइंस मौजूद ना हो, जिस पर इलेक्शन, हाँ अगर ये कमेटी इलेक्शन सदारती इलेक्शन पहले कुछ गाइडलाइंस बनाती, जैसे कि उन्होंने कहा कि अब हम हुस्नी मुबारक की बाकियात को पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे और किसी भी इलेक्शन के लिए वो अगले चंद साल के लिए नाआयल हैं, और जैसा कि आमतौर पर होता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला ऐसे किया है कि जो भी सामने आया ये हाँ है और ये ना है, उन्होंने अपनी मर्जी की है, तो मुझे तो इसमें इस पूरे सिस्टम को खत्म करने की बू आती है। और मेरा तज्जिया तो ये है कि आर्मी अपना तसल्लुत किसी भी तौर पर छोड़ना नहीं चाहती, और वो इस इशू को, यानी सदारती इलेक्शन में कैंडिडेट्स के मुस्तरद होने के इशू को एक कौमी इशू बनाकर और इसको लोगों को सड़कों पर लाकर मजबूर करना चाहती है कि वो जून में होने वाले इंतखाबात को गैर मुइना मुद्दत के लिए मनसूख कर दें, जैसा कि 1977 के अक्टूबर के इंतखाबात पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनाब जियाउल हक ने पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से खौफजदा होकर इल्तवा में डाले थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री किसी न किसी तरीके पर ऐसा इनकलाब, जो कि आधा इनकलाब था, और ये इनकलाब सिर्फ मुबारक के खत्म होने पर भी न रहा बल्कि अवाम को एक दफा फिर मिलिट्री की सख्त गिरी को और इलेक्शंस को बर्वक्त कराने के लिए एक दफा फिर मैदान में आना पड़ा और फिर मिलिट्री जो है वो अकब में गई और वो पीछे गई। तो मैं ये समझता हूँ कि मिस्र के हालात में एस्टेब्लिशमेंट, यानी मैं जिसको मिलिट्री कहता हूँ, उसका बहुत गहरा तसल्लुत है और वो बहुत दूर रस उसके असरात हैं। तो इस तरीके पर वो ये चाहते हैं कि अब तक जो पार्लियामेंट आई है, और अगर वो चाहते थे कि इंतखाबात हों और मुअस्सर और शफाफ इंतखाबात हों, तो ये जो पार्लियामेंट आ गई थी, भले ये वज़ीरे आज़म के इंतखाबात न करती, लेकिन कम अज कम इसको इतनी कानून साजी की इजाजत होनी चाहिए थी कि सदारती उम्मीदवारों की अहलियत के बारे में कुछ रहनुमा असूल बना देती, जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ लोगों को जांचा जाता और फिर उनकी अहलियत के मुताबिक फैसला होता। ये तो उन्होंने आर्बिट्ररी फैसला कर दिया है। अगरचे अख़वान मुस्लिमीन के एक बहुत मजबूत कैंडिडेट को मुस्तरद करने के बाद इन इंतखाबात की हैसियत कठपुतली की रह जाएगी, और वो चाहते भी ये हैं कि मुस्तकबिल में मिस्र की कयादत एक कमजोर आदमी के हाथ में आए, और खैरात जैसे आदमी के हाथ में अगर आ जाती तो उसका बहुत आमरियत के खिलाफ लड़ने का तजर्बा, जेलों में उसका रहने का बहुत वसी टेन्योर, और वो मुल्क का एक महबूब रहनुमा होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लेकिन अगर अख़वान मुस्लिमीन का कोई भी आदमी होगा तो वो यकीनी तौर पर है, और ये दीवार पर लिखा हुआ है और उनकी पार्लिमानी अक्सरियत है, और जिस अंदाज में मिस्र के सदारती इंतखाबात पर रास्त हैं तो उसका होना यकीनी है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मिस्र में एक कमजोर रहनुमा की सूरत में आर्मी का असर व रसूख एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत में अमल दखल ज्यादा देर तक और ज्यादा हमेशा के लिए रहे, और यही वो तरीका है कि उन्होंने मजबूत कैंडिडेट्स को रोकने का मुकम्मल कोशिश की है। और मैं ये समझता हूँ कि मिस्र की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए ये कोई नेक शगुन नहीं है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। ये उमर सुलेमान ने जो कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे, तो ये तो सारी दुनिया को पता था और ये बिल्कुल बात ये अंडरस्टूड थी कि इस पर सख्त रद्द अमल सामने आएगा और ऐसा रद्द अमल सामने आएगा कि जिससे पूरे मुआशरे में खलफशार पैदा हो जाएगा और उनका जीतना भी नामुमकिन था। जिस तरह से अवाम में नफरत पाई जाती है हुस्नी मुबारक के लिए और हुस्नी मुबारक की पूरी टीम के लिए, तो इसने जो कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे ये किसी साजिश के तहत कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे? इसका कोई खास हदफ था या वाकई वो एक सदारती उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आना चाहता था?
मेरा ख्याल ये है कि आपके सवाल के अंदर जो बात पोशीदा है, मैं उसकी तस्दीक करूंगा कि ये एक तरह की कंस्पायरेसी लगती है, एक तरह की साजिश लगती है। गालिबन फौजी कौंसिल जो है और उसके ज़ेरे असर जो इलेक्शन की कमेटी है और जिसका सरबराह भी एक साबिक फौजी है जो कोर्ट मार्शल अदालतों का सरबराह रहा है और जो बहुत से मिस्रियों को और ख़ास तौर पर अख़वानुल मुस्लिमीन के लोगों को और सज़ाएं भी सुनाता रहा है, उस शख्स का इलेक्शन कमेटी के सरबराह के तौर पर एक किरदार और उसके ऊपर फिर बैठी हुई फ़ौजी कौंसल, गालिबन उन्होंने तय कर लिया था, क्योंकि खैरात शातर का जो फैसला है वो भी ज़रा ताखीर से सामने आया था और शुरू में यही लगता था कि जो ऐलान उन्होंने किया था कि अख़वानुल मुस्लिमीन इसमें हिस्सा नहीं लेगी, यही सबब बना कि अब्दुल फतू जो हैं उनको भी ये कह दिया गया जी कि ये हमारे कैंडिडेट नहीं हैं। लेकिन लगता ये है कि फौजियों ने या उस कौंसल ने या जो एक कंस्पायरेसी तैयार हुई वो यही थी कि शातिर को, खैरत शातिर को बाहर किया जाए इस सारे अमल से। तो बाहर करने के लिए उन्हें ज़रूरी था कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार भी हो जो बज़ाहिर उनका हमनवा हो, दमसाज हो, हमदर्द हो और ये बावर कराया जा सके कि हमने तो बड़ा गैर जानबदाराना काम किया है, हमने अपने उम्मीदवार की एहलियत को भी ख़त्म कर दिया और उसे बाहर कर दिया और अगर उनकी अख़वानुल मुस्लिमीन का आया तो उसको भी रद्द कर दिया। तो ये गालिबन निशाना, असल निशाना जो थे वो तो शातिर ही थे, खैरत शातिर ही थे, लेकिन उस निशाने तक पहुंचने के लिए एक उन्होंने मोरा खड़ा किया उमर सुलेमान की शक्ल में ताकि हम अपनी एक गैर जानबदारी का तासुर दे सकें। हालांकि उमर सुलेमान का खैरत शातर के साथ कोई मुवाजना नहीं है, वो एक मुजाहिदाना ज़िंदगी उस शख्स ने गुजारी, अरबपति करोड़पति एक ताजर होते हुए मुश्किलात सही, जेलें बर्दाश्त की, सऊबतें बर्दाश्त की, टकराव किया हुस्नी मुबारक की रिजीम के साथ, और वो इनकलाब जिस तरह के एक रूहानी और ज़ाहरी और मादी तब्दीली का तकाजा करता है वो मेरा ख्याल है कि उन तमाम मेयारात पर पूरे उतरते थे, इसलिए उन्हें बाहर करना ज़रूरी हो गया। और अख़वानुल मुस्लिमीन ने जो पार्लिमानी एक बालादस्ती हासिल की हुई थी, गालिबन ये सोचा गया फ़ौज के अंदर कि अगर इस पार्लिमानी बालादस्ती के साथ साथ वज़ीरे आज़म भी इनका आ जाता है और सदारत के मनसब पर भी ये जमात काबिज़ हो जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इनके लिए अपना एजेंडा जो भी ये रखते हैं वो उसको अमली जामा पहनाना बड़ा आसान हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो कि जो बाकियात हैं हुस्नी मुबारक की, चाहे वो फौज के अंदर हैं, चाहे वो सिविल के अंदर हैं, चाहे वो किसी और शोबाई ज़िंदगी के अंदर हैं, उन बाकियात की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। और ख़ास तौर पर फौज, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जो कमो बेश 6 दहाइयों के साथ फौजी पस मंज़र रखने वाले सदूर की वजह से बराए रास्त इकतदार में शामिल रही है, बराए रास्त फैसले करती रही है, बराए रास्त उसे रियासत के ऊपर बालादस्ती हासिल रही है, वो यकायक अपने सारे असर व रसूख से, अपनी बालादस्ती से और अपने तहक्कुम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये तसव्वुर कि अख़वानुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट में भी अक्सरियत रखती हो, वज़ीर आज़म भी उसका हो, सदर भी उसका हो और यूं इख्तियारे कुल्ली उस जमात के हाथ में आ जाए या उसके इत्तेहादियों के हाथ में आ जाए, तो ये एक बड़ा खौफनाक तसव्वुर है जो फौज के जहन में बैठा हुआ है। और मैं ये यहाँ पे आपको बता दूं कि ये तसव्वुर सिर्फ दाखिली तौर पर जो हुस्नी मुबारक के हमनवा हैं या रुफका हैं उनके अंदर ही नहीं है, ये तसव्वुर इसराइल के अंदर भी मौजूद है اور یہ تصور امریکہ کے اندر بھی موجود ہے، یہ تصور یورپ پہ بھی موجود ہے، یہ تصور ہر اس مقام پہ موجود ہے جن کے دلوں میں یہ وائمہ ہے کہ چاہے کتنے ہی رنگ بدل لے اخوان المسلمین، چاہے وہ کتنی ہی جدت تراز ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی اپنا ایک نیا پیرہن لے کے آ جائے کہ جی ہم بڑے اب حقیقت پسند ہو گئے ہیں اور بڑے روشن خیال ہو گئے ہیں، انہیں یقین ہے کہ چونکہ اس کا خمیر اسرائیل دشمنی سے اٹھا ہوا ہے، چونکہ اس کے خمیر کے اندر اسلام رچا بسا ہے، تو یہ کہ عادت جو ہوگی شاید آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گی، اور شاید آنے والے دنوں میں مصر اور ایران کے باہمی روابط میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، یا جو گریٹر اسلامک کاز ہے اس کو تقویت ملے اخوان المسلمین سے، یا پھر جہاں پہ ملوکیتیں ہیں، جہاں پہ امریتیں ہیں اسلامی ممالک کے اندر، وہاں پہ بھی انسپائریشن پیدا ہو جائے ایک اسلامی شناخت اور تشخص رکھنے والی حکومت کی وجہ سے، تو یہ سارا ایک کھیل ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی قوتیں یہ نہیں چاہتی، ایک عوامی عمل ہے، براہ راست اس دائرے کو روکنا تو مشکل ہے، جب بیلٹ باکس سے ایک فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کو رد کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن الجزائر میں آپ دیکھ چکے ہیں امریکہ نے کیا کیا، امریکہ آپ کے ہاں کیا کر رہا ہے، امریکہ ہر اس جگہ جہاں بے شک کتنی ہی حقیقی عوامی رائے سامنے آ جائے، اگر حکمران جو ہیں وہ امریکہ کے فرما بردار نہیں آتے تو وہ وہاں کوئی نہ کوئی اڑچن ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ڈال دیتا ہے، لیکن جہاں پہ کوئی جمہوریت سرے سے بے شک نہ ہو، جہاں بنیادی انسانی حقوق کا تصور ہی کوئی نہ ہو، جہاں پہ عدالتیں بھی نہ ہو، جہاں پہ کوئی نظام انصاف بھی نہ ہو، لیکن وہاں کے حکمران اگر امریکہ کے ہم نوا ہیں اور اس کے حاشیہ بردار ہیں اور خطے میں اس کے مقاصد کی آبیاری کر رہے ہیں، تو وہاں اسے جمہوریت کا خیال نہیں آتا۔ تو میرے خیال کے اندر نہ صرف اس انقلاب کو داخلی مشکلات درپیش ہیں، بیرونی قوتوں نے بھی حسنی مبارک کی رخصتی کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا، اور اس رخصتی کے بعد اگر ایسے لوگ آ جائیں جو امریکہ کی اور اسرائیل کے حوالے سے جو اہداف و مقاصد ہیں ان کی امنوائی کریں، تو شاید وہ اس انقلاب کو بھی برداشت کر لے گا، لیکن ایسے لوگ اگر آ جائیں اور وہ اختیار کلی بھی حاصل کر لیں جو امریکہ کے بارے میں ایک سوچ رکھتے ہیں اپنے خمیر کے اندر، بظاہر وہ کچھ بھی کہتے رہیں، اور جو اسرائیل کے حوالے سے ایک سوچ رکھتے ہیں اپنے جوہر خاص کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنی فکر کے اندر، تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات ہیں بڑی کٹھن، اور انہی کے تحت جو آپ کا بنیادی سوال تھا، عمر سلیمان کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ لایا گیا کہ اس کی گردن جب ہم اڑائیں گے تو کہیں گے جی کہ دیکھیں ہم نے تو اپنے پرائے کا کوئی تفریق نہیں کی ہے، ہم نے تو اصولوں اور قانون کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میدان میں ہمارے امیدوار وہاں پہ نظر آتے ہیں ہمیں، ان میں کس طرح کی جنگ ہوتی ہے، عبد المنعم فتوح جو ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے، کیا انہیں اون کر لیتی ہے اخوان المسلمین، یا ان کے ایک اور متبادل کینڈیڈیٹ محمد المرسی موجود ہیں میدان کے اندر، انہی کو آگے لے کے آتی ہے، یا پھر عوامی احتجاج کی ایک لہر اٹھتی ہے جیسے کل مظاہروں کی وہاں پہ اپیل کی گئی ہے جمعۃ المبارک کو، تو اس عوامی لہر کے اندر وہ الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے پہ دستانی کرنے پہ تیار ہوتا ہے، تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے چند بنیادی اور بڑے اہم اقدامات ہوں گے اور فیصلے ہوں گے۔
جی بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ میں اس تجزیے سے متفق ہوں، لیکن یہ سمجھنا کہ اب عوام کو دوبارہ اس راستے پر واپس لایا جا سکتا ہے جو کہ مبارک کے زمانے میں تھا، تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی۔ نہ یہ امریکہ کر سکتا ہے، نہ یہ اسرائیل کر سکتا ہے، نہ یہ فوج کر سکتی ہے، نہ وہ سارے لبرل حضرات جو کہ مغرب زدہ ہیں اور جو کہ اخوان کو سیاسی عمل سے دور رکھ کر کے اور اخوان کو جیلوں میں بھیج کر کے اب تک مزے لوٹ رہے تھے، یہ سب کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب عوام کی اتنی بڑی تعداد ایک ایک ملین، دو دو ملین میدان التحریر میں آگے کھڑی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی طاقت کتنی بڑی بھی ٹینک لے کر کے آئے، وہ اس کو رد نہیں کر سکتی ہے، وہ اس کو واپس نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اگرچہ کچھ مشکلات ہوں گی، اگرچہ کچھ دیر ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس دیر کے بعد جو صورتحال نکھر کر کے آئے گی وہ اس سے بھی بہتر ہوگی جو کہ ابھی انہیں حاصل ہو پائے گی۔ इसलिए ये समझना कि किसी तरह से वो नाकाम कर पाएंगे, ये समझना कि अलजायर की सूरत हाल दोबारा आ सकती है, ये समझना कि हमास की जिस तरह उन्होंने तंग किया था वो दोबारा आ सकता है, आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज जो अरब स्प्रिंग आई है वो सिर्फ मिस्र में नहीं आई है बल्कि तकरीबन आलम अरब के अक्सर इलाकों में आ गई है, कहीं कामयाब हो चुकी है, कहीं पर आधे कामयाब हुई है, कहीं पर अभी लहर चल रही है, इसलिए उसको वापस नहीं लाया जा सकता। और उसी के साथ अमेरिका की साख भी टूट चुकी है, इसराइल की साख भी टूट चुकी है, तो ये लोग ये ख्वाब देखना बंद कर देंगे ये दोबारा उन हालात को वापस ला सकते हैं। ये ज़रूर है कि वो लोग जिनको कि आज मिस्र में फलूल कहा जा रहा है यानी बाकियात जो उस पुराने निज़ाम के हैं, ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस कोशिश में इंशाअल्लाह चूंकि अवाम इनके साथ है, जैसे कि ईरान में हमने देखा कि अवाम इमाम खुमैनी के साथ थी, इसलिए बड़े से बड़े लोग थे, सारे जनरल और सारे लोग सब अपने बंदूकें छोड़ करके भागे, मुल्क छोड़ करके भागे, तो ये सूरत हाल यहाँ पर भी होगी। तो ये एक खुशाइंद बात है कि ये निज़ाम जिसको कि खामोशी से और शराफत से जाना चाहिए था, ये शराफत से नहीं जाएगा बल्कि ये पिट करके जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह इसका रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और ये किसी तरह से ना आ पाएगा। आज से जो सूरत हाल मिस्र में है कि वो निज़ाम सिर्फ फौज में नहीं बल्कि वो निज़ाम मीडिया में मौजूद है, वो निज़ाम जुडिशरी में मौजूद है, वो निज़ाम आम जिंदगी के बहुत से जो मसाइल वहाँ मौजूद है, और ये वो निज़ाम जो नासिर सादात और मुबारक के दौरान कायम हुआ था वो आज भी मौजूद है, अगरचे पार्लियामेंट पूरी तरह बदल चुकी है। पार्लियामेंट में आज जो है आप 70% इस्लाम पसंद लोग देख रहे हैं, और उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो कि पुराने निज़ाम के बिल्कुल दुश्मन हैं और उसको बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आज जब अवाम ने अपनी बात कह दी है, उसके बाद इस बात का इम्कान के फौजी जनरल बैठ के किसी कमरे में फैसला कर दें और कुछ टैंक भेज करके उनको ज़बरदस्ती मजबूर करें कि तुम जो है दोबारा अपने घरों में चले जाओ, जो कुछ हम कर रहे थे हमको करने दो, ये नहीं हो पाएगा। यकीनन वो ज़रा सा इसको डिले कर सकते हैं, देर लगा सकते हैं, लेकिन इससे अवाम की ताकत नहीं बंद हो सकती है। एक पूरे इलाके के अंदर एक नई सूरत हाल कायम हो चुकी है, इस सूरत हाल को अब दोबारा बदलना बिल्कुल नामुमकिन है।
खान साहब, मसला सिर्फ जर्नलों का नहीं है, मसला मिस्र की जो पोजीशन है आलम इस्लाम में इसराइल के मुकाबले में, गज़ा से उसकी सरहद मिली हुई है, अमली तौर पर गज़ा का मुहासरा नाकाम हो जाता है, और मिस्र में अगर इस्लाम पसंद और फ़लस्तीन के तरफदार हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर इसराइल पूरी तरह से घेरे में आ जाएगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप ये समझते हैं कि आलमी सतह पर जो ताकतें इस वक्त असरअंदाज हो रही हैं हर जगह, जिन्होंने लीबिया पर कब्ज़ा कर लिया है, ट्यूनिस को भी उन्होंने इनकलाब के ट्रैक से हटाने की कोशिश की है, वो मिस्र को क्या आसानी के साथ इस्लाम पसंदों के हाथ में जाने देंगी?
नहीं, देखिए अगर आप वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखें तो आज वहाँ पर इसराइल का सफारतखाना बंद हो चुका है, वो चाबी लग चुकी है और सारे के सारे लोग अपना सारा सामान ट्रकों में भर करके इसराइल जा चुके हैं। आज गज़ा का मुहासरा अमलन ख़त्म हो चुका है, आज वहाँ पर सामान भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं, ये सब उसी वजह से हुआ है जो कि वहाँ पर इंतखाबात और उससे पहले जब आवाम सड़कों पर निकले, एक दो आदमी नहीं निकले बल्कि दो दो मिलियन लोग निकले, और उसी वजह से जो इनकलाब आया है, लोग अब जाग चुके हैं, लोगों के दिलों से अब डर जा चुका है। सब लोग डरे हुए थे, ऐसा नहीं था कि मैंने तो ये 30-40 साल पहले भी देखा है कि लोग तब्दीली चाहते थे, लेकिन वो डरे हुए थे कि हम अगर निकलेंगे तो हमारी पिटाई होगी, हम निकलेंगे तो गोली लगेगी, लेकिन आज वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज इस बात का सवाल नहीं पैदा होता कि उनको दोबारा उस हालत पर लौटाया जा सकता है, और इसराइली सफारतखाने का बंद होना, ताल्लुकात नहीं खत्म हुए हैं, कागज पर ताल्लुकात कायम है, लेकिन सफारतखाने का बंद होना इतनी बड़ी बात है कि जिससे मालूम होता है कि मुस्तकबिल क्या होने वाला है। और शायद अगर ये लोग यही काम करते रहेंगे तो कोई बईद नहीं कि जिस तरह तहरान में अमेरिकी एम्बेसी बंद हो चुकी है और अभी बंद है, वैसी मिस्र में भी बंद हो जाएगी, इसलिए कि मिस्री अवाम जाग चुके हैं और मिस्री अवाम की जो तमन्नाएं हैं वो तकरीबन वैसी ही जैसे कि ईरानी अवाम की हैं, जैसे जजायरी अवाम की हैं, जैसे तूनिसी अवाम की हैं, कोशिशें जारी हैं, मैं समझ रहा हूँ, कोशिशें जारी हैं कि इनको अपने ट्रैक से हटाया जाए, इनको दोबारा उनको उन उन चीज़ों को कबूल करने पर आमादा किया जाए, उनसे कहा जाए कि अगर तुम ये सब नहीं मानोगे तो तुमको हम दुनिया भर में एकदम मुअत्तल करके रख देंगे और तुम्हारा हिलना चलना, तुम्हारी तजारत, हर चीज़ बंद कर देंगे। लेकिन इसका कोई भी इम्कान इस वक्त नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अमरीका की ताकत ख़त्म हो चुकी है, अब एक नई दुनिया कायम हो रही है, नई दुनिया बन रही है, जिसको कि हमने अभी यहाँ हिंदुस्तान में देखा, ब्रिक्स के नाम से एक जो नई तंजीम बनी है, आज रूस जो है दोबारा खड़ा हो रहा है, चीन दोबारा खड़ा हो रहा है। तो वो ये सिलसिला चला था जो जिसकी वजह से वो इराक में इन्होंने हमले कर दिए, जिन्होंने अफगानिस्तान में हमले कर दिए, वो सिलसिला अब नहीं चलेगा, अब वो ख़त्म हो चुका है। आज ज़रूर वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर समझता हूँ कि ये सिर्फ गीजड़ भपकियाँ हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ज़माना बदल चुका है और ज़माने के साथ साथ इन ताकतों को भी बदलना होगा। नहीं बदलेंगे तो मुँह की खाएँगे और आवाम के सामने ये टिक नहीं पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। सफदर रजा साहब, आप लाइन पर हैं जनाब?
जी मैं लाइन पर हूं।
जी जनाब, दो मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है। इलेक्शन वक्त पर होते नजर आ रहे हैं आपको मिस्र में?
जी मैं ये समझता हूं कि मुझे शैम इलेक्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के कैंडिडेट्स हों और इस्लामी कैंडिडेट्स की ज्यादा अक्सरियत हो और वो आपस में वोट तकसीम हो जाए। मैं ये समझता हूं कि अगरचे उमर सलेमान को नाअहल करार देने का फैसला तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि तो उमर सलेमान उस रिजीम में थे, क्योंकि जब हुस्ने मुबारक के खिलाफ मुजाहरे होते थे तो उसके साथ ही उसकी जो पार्टी और वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और वो सबसे ज्यादा 90% उनकी सीटें थी, तो उसकी मुझे हमें याद है कि दरिया नील के किनारे उसके कई मंजिला इमारत को आग लगी हुई थी, लोग अपना गुस्सा न सिर्फ कायरा में बल्कि सिकंदरिया में और बाकी जगहों पर उनके उस पार्टी के खिलाफ निकालते थे। मुझे ये भी याद है कि 1978 और 79 में शाह की रस्तखेज पार्टी के खिलाफ भी आवाम का सिर्फ शाह के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी बाकियात और उसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा होता था। हम ये भी देख चुके हैं कि त्यूनिस के अवाम ने भी न सिर्फ ये कि जैनुद्दीन बिन अली के खिलाफ मुजाहरे किए बल्कि उसकी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बात की और वो मुजाहरे हुए और उसकी पार्टी का अब कोई आदमी हकूमत में नहीं है। और हमने ये भी देखा कि कैसे जब इराक के पहले इंतखाबात हुए तो कैसे बास पार्टी के लोगों को इंतखाबात में शिरकत न करने देने के लिए कानून साजी हुई और कैसे इराक के पड़ोसियों ने बास पार्टियों और बासियों के हक में मुहिम चलाई। तो मैं ये समझता हूं कि ये बात तो काबिल फहम है, लेकिन अख़वानुल मुस्लिमीन के सबसे मजबूत कैंडिडेट जनाब खैरात शातिर को बाहर निकालना, ये इससे साजिश की बू आई थी और मुझे लगता ऐसा है कि ये आखिरी हरबा है वहां की फौजी इंतजामिया का कि अवाम की आवाज को किसी न किसी तरीके पर गलत रुख पर मोड़ा जाए और इनकलाब के असरात अवाम तक न पहुंचे।
बहुत बहुत शुक्रिया सफदर रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जैसा कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब ने कहा है कि मिस्र के अवाम बेदार हैं, होशियार हैं और मैदान में मौजूद हैं, और जब तक अपने इनकलाब के तहफ्फुज़ का जज्बा मिस्र के अवाम में पाया जाता है और वो मैदान में मौजूद हैं, मिस्र का इनकलाब इंशाअल्लाह महफूज है। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।